وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی طرف اشارہ فرمایا، کون سا گھر؟ جو خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بنا دیا، اس گھر کو لوٹنے کی جگہ، یعنی لوگ بار بار اس طرف لوٹیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک طرح سے تمہید شروع ہو رہی ہے، اب جو قبلہ شفٹ ہونے والا ہے، اب یہ قبلے کی بات آ رہی ہے۔ قبلے کے معمار کی بات تو پہلے آ گئی نا، قبلے کے بنانے والے کی نہیں، انہوں نے کنسٹرکٹ کیا تھا نا، کنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو ان کی بات پہلے آ گئی، اور اب قبلے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے، ایک امن کی جگہ بنا دیا۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کہ کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں کتنی خوبصورت جگہ کوئی ہو، کتنی سینک جگہ، آپ وہاں پہ دو چار دفعہ چلے جائیں نا، تو اس کے بعد انسان کہتا ہے اگلی دفعہ کہیں اور ویکیشن پہ چلتے ہیں، وہ تو پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے نا، حالانکہ کتنی خوبصورت ہو، نہیں اب نہیں وہاں پہ جانا، آپ کہیں اور چلیں گے۔ لیکن کیا بات ہے اللہ کے گھر کی، کہ انسان جو نہیں گیا اس کو تو تڑپ ہوتی ہی ہوتی ہے، جو جا چکا ہو اس کو اس سے بھی زیادہ تڑپ ہوتی ہے، کہ وہ کہتا ہے اللہ دوبارہ بلا لے، اللہ دوبارہ بلا لے۔ حالانکہ کیا ہے وہاں پہ کوئی سینک بیوٹی ہے، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے بس، کیا اس کے اندر اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا کہ بار بار لوگ آتے ہیں اس گھر پہ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی 5 سال تک مسلسل اس کو گزر جائیں اور اس نے حج نہ کیا ہو اور یہ نہ کیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، جدھر بھی جا کے یہودی مرے نصرانی مرے، جو نہیں آتا اللہ گھر کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو وہ ہے لوٹنے کی جگہ، جو جس کو اللہ سے محبت ہے نا تو وہ اس کو اس کے گھر سے محبت ہے۔ تو اور امن کی جگہ بنا دیا، یہ آج سے نہیں امن کی جگہ، یہ زمانہ جاہلیت میں جس وقت ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی امن کی جگہ تھی، لوگ اپنے باپ کے قاتل کو یہاں پہ دیکھ لیتے تھے نا، کہیں اور نہیں مل رہا، یہاں پہ نظر آ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس کو، کیوں؟ اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ نہیں یہ حرمت والی جگہ، عزت والی جگہ، یہاں پہ امن ہے، وہاں پہ کسی کو قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، فساد کرنا، سب سے یہ ٹینشن فری زون، پیس کی جگہ ہے، مکمل امن و امان ہے یہاں۔ اچھا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ امن کی جگہ ہے، ہم اس کا امن پلیوٹ نہ کریں۔ جب ہم طواف کرتے ہیں کبھی سیل فون پہ باتیں کر رہے ہیں لوگ، کبھی وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں لوگ کہ پوز بنا بنا کے، کہ ہم نہیں، ہم نے اپنی یادگار رکھنی ہے۔ یادگار کیا رکھنی ہے؟ تم عمرہ حج کے لیے کیوں آئے ہو، یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں یہ نیکی لکھی ہو، یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، یہاں پہ آ کے میں کچھ سیکھوں، اپنی آخرت کو یاد کروں، اللہ سے قرب ملے، کہ ہم اس کو بھی بس یہ کہ میں تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ جلدی سے لگا دوں، لوگوں کو پتہ چل جائے میں حج عمرے کے لیے آئی تھی۔ تو یہ کام وہاں پہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی ہے وہاں پہ، لیکن جو نہیں آج تک جا سکے اللہ تعالیٰ لے کر جائے، سب کو ہی لے کر جائے، بار بار لے کر جائے، کہ وہ گولڈن سا ایک ہے نا خانہ کعبہ کے، جدھر کا دروازہ ہے کعبہ کا، اس کے آپ سامنے کو دیکھیں، وہ ایک گولڈن سا ایسے ٹوم سا بنا ہوا ہے، اس گنبد سا اوپر بنا ہوا ہے، اور جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سائڈ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو مصلی کی جگہ بنا لو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک پتھر ہے، وہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، کنسٹرکشن کی تھی نا، تو اس وقت اس پتھر پہ وہ کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے نہ ان کے پاس کوئی کرین تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایلیویٹر، کوئی لفٹ تھی کہ اوپر جائیں نیچے آئیں، تو کس طرح کرتے پھر؟
तो ये पत्थर था, अल्लाह ताला ने ऐसी एक अल्लाह की तरफ से मोजजा था कि जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो जब उनको ऊपर जाना होता था पत्थर ऊपर चला जाता था, नीचे जाना होता था नीचे चला जाता था। और सुभान अल्लाह, उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको मुसल्ला बना लो। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानों को कि उनको भी महफूज कर दिया और फरमाया कि इनको इमाम बनाओ। यानी अब आप जब जाते हैं तो जाहिर है जो लोग ने हज उमरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तवाफ करके आप 2 रकत पढ़ते हैं तो मुकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ते हैं, या मस्जिद हराम में कहीं पे भी पढ़ लें उसको बीच में रख लेते हैं, है ना। काबे को तो फेस कर रहे थे, इसको बीच में रखा होता है। तो यानी जब भी तवाफ करोगे तो इसको बीच में रख के नमाज अदा किया करो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बताते हैं जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देते हैं ना, जो अल्लाह के हुक्मों को के ऊपर लबाई कहते हैं ना, उनके पैरों के निशान भी अल्लाह ताला ऐसे महफूज कर लेते हैं, और उनके पैरों के निशानों को भी अल्लाह ताला लोगों के लिए ये बना देते हैं यादगार के ये हैं उसके कदमों के निशान जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया, जो अल्लाह का हो गया था, जिसने अपनी हर चीज अपने रब के सपुर्द कर दी थी। देखो इंसान कितनी कोशिश करता है, मेरे मरने के बाद मेरा नाम बाकी रहे, मुझे ये हो जाए वो हो जाए, उसके लिए तस्वीरें बनाता है, वीडियो बनाता है, फलां करते हैं, एल्बम्स हमने इकट्ठी की हुई है। हाँ कभी कोई लोग याद करेंगे, याद करेंगे, यादगारें हमें कितनी प्यारी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ना कोई पिक्चर ली, ना कोई वहां पे अपनी वीडियो बनाई, ना कोई और चीज की, ना लोगों को कहा कि मेरे पीछे याद करना मुझे। ये अल्लाह है ना जो ऐसे कदमों की भी कदरदानी करता है कि इन कदमों को भी अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। उन वो तो नहीं कह के गए थे, अल्लाह ताला ने कदरदानी की है ये। तो जो अल्लाह के प्यारे होते हैं ना, अल्लाह ताला इस तरह उनको रहती दुनिया तक कियामत तक के लिए, सुभान अल्लाह, देखिए 1000 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, रहती दुनिया तक ये कदमों के निशान बाकी रहेंगे और लोग इसके पीछे नमाज पढ़ते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया हमेशा तक कयामत तक कि देखो ये मेरे प्यारे के कदमों के निशान है, अगर तुमने मेरा प्यारा बनना है ना तो इन्हीं निशानों की पैरवी करना, इन्हीं को फॉलो करना, इन्हीं कदमों को, तो मुझ तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और अहद लिया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और इस्माइल अलैहिस्सलाम से। क्यों इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आया यहाँ पे? इसलिए वो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, ये घर तामीर कर रहे थे। ये कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए यहाँ पे और उन्होंने बताया इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि उसका घर बनाया जाए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मिल के फिर ये घर तामीर किया। तो अब यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए भी खास तौर पे लिया गया कि देखें वो लोग यहूद तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं थे, उनको लिजिटिमेट औलाद ही नहीं समझते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कहते थे नऊज़ु बिल्लाह ये कोई हराम औलाद है, तो और उनका बिल्कुल एहतराम भी नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो तो अपने बाप के साथ काबे की तामीर में शामिल थे। फिर जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए, देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तीर बना रहे, तो वो अपने वालिद को देख के खड़े हो गए, मुलाकात की। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि अल्लाह ने एक काम का हुक्म दिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें? कहा क्यों नहीं, फौरन तैयार हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस टीले की तरफ इशारा किया जहां पे अल्लाह का घर था कि मुझे इसकी तामीर का हुक्म हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने जब ये तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अहद लिया इनसे, पक्का वादा लिया इनसे, क्या कि अंतहिरा बैतिया लित्तौइफीन वल आकिफीन व रुक्का इस सुजूद, कि मेरे घर को आप पाक रखना, किन के लिए? तवाफ करने वाले के लिए, तकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। यही बात सूरह हज में भी आई है, आयत नंबर 26 में, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتا دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. تو یہ وہاں پہ بھی آیت اسی طرح آئی ہے. تو اب طہارت کیا ہے اس گھر کی؟ طہارت دو طرح کی طہارت ہے، ایک تو ظاہری، جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مسجد کا بھی بتایا تھا نا کہ مسجد کی ایک ظاہری پاکی ہے، ظاہری وہ اس کی میرے خیال ویرانی کی اس وقت باغ پہ آئی تھی کہ ایک ظاہری ہوتی اور ایک معنوی ہوتی. تو مسجد کی بھی ایک ظاہری اس کی پاکی صفائی ہے، اور اس میں کیا آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بدبو نہ ہو، کوئی کوڑا کرکٹ نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ عبادت کرنے والوں کے لیے وہاں پہ آنے میں کوئی رکاوٹ ہو، ان کو اچھا نہ لگے. کیونکہ عبادت کے اس سے آ رہے ہیں نا، جب آپ ایک ذہن لے کر آتے ہیں عبادت کا تو پاک صاف جگہ ہونی چاہیے تاکہ یکسو ہو کے اللہ کی طرف بالکل اپنی توجہ کر سکیں، ٹھیک ہے، فوکس کر سکیں. تو جب اگر کسی جگہ پہ گندگی ہوگی تو گندگی تو شیطان کی جگہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں مسجدوں کو، یہ تو خاص طور پہ خانہ کعبہ کی بات ہے نا، لیکن اس میں پھر ساری مساجد آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر ہے نا ساری مسجدیں، کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا کتنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسجدوں کے اندر دیکھیں یہ لہسن اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں کھا کے آنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے. تو جب کہیں سمیل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لوگوں کا عبادت میں خلل پڑے گا. اور فرشتے یہاں پہ آتے ہیں مسجدوں میں، اللہ کے گھر ہے نا، تو اس لیے جب فرشتے جہاں پہ موجود ہوں تو فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں. تو ایک تو ہم عورتیں بھی، یہ نہیں اگر گھر میں پیاز لہسن اور وہ کر کے کھانے پکا کے اور ہمارے کھانوں کی اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے وہ ابایوں میں گھس جاتی، اب وہ ابایا نہ کبھی دھونا نہ کچھ ہے، اسی کو بار بار پہن پہن کے مسجد چلے گئے. یہ چیزیں مسجد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا لباس، کوئی جس میں اسمیل نہ ہو. یہ بھی نہیں کرنا کہ اوپر خوشبوئیں لگا کے چل پڑے، وہ تو بالکل ہی منع ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بالکل منع ہے، نوٹ الاؤڈ. مسجد کے لیے پرفیوم نہیں یوز کرنا، لیکن ساتھ یہ، ہاں اتنی اسمیل کر سکتے ہیں جو آپ تک ہو، یا جو جیسے آپ کے گلے کوئی مل رہا ہے تو اس کو آئے گی، پھیلنے والی اسمیل نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ڈیوڈرنٹ لگا دیا، کوئی ایسا پاؤڈر لگا لیا کہ بھائی اسمیل نہ آئے. تو بدبو سے پاک رکھیں مسجدوں. آپ یہ بتائیں، یہ تو کپڑوں کا ہو گیا اور جگہ بھی تو پاک صاف رکھنی ہے. اب اس میں ٹوائلٹس کی سب سے زیادہ بات آ جاتی ہے، مسجد میں ہی ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اگر عبادت کرنے والے آئیں اور ٹوائلٹس سے پریشان رہیں، خاص طور پہ جن جو بڑی مسجد ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، جیسے وہاں پہ مکہ میں یا مدینہ میں، تو لوگ ٹوائلٹس کا بھی حشر کر دیتے ہیں. اس وقت یہ بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میری مسجد کو، میری گھر کو پاک صاف رکھنا، اور ہم گندگی مچا رہے ہیں آ کے اور ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خود ہی وہ صاف کریں گے. آ کے وہاں پہ پہنچ کے تو بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ لوگوں نے اس قدر گندگی مچائی ہوتی کہ انتہا سے صاف. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میرے گھر کو صاف، پاک صاف رکھو، سوچے پھر آپ کتنی یہاں پہ صفائی کی ضرورت. اسی طرح اور کوئی بدبودار چیز ہے وہ مسجد میں نہیں لے کر آنی چاہیے یا نہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے. جیسے کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ان کی کپڑوں سے بھی سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی، دوسرے نمازی اس سے پریشان اور بیزار ہوتے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ مسجد کے احترام کی پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان جگہوں کو پاک صاف رکھا جائے. اپنے گھروں کو صاف رکھنے کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں، کبھی ایئر فریشنر لگاتے ہیں، کبھی کینڈلز جلاتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے کبھی وہاں پہ ایسے کھانے لے کر آتے ہیں، ایسے کھانے وہاں پہ کھائے جاتے ہیں کہ ان کی اسمیل ہی، خاص طور پہ جس جگہ پہ نماز ہو رہی ہو وہاں پہ ایسے کھانے نہیں لانے چاہیے اور کھانے نہیں چاہیے جن سے، جن کی اتنی اسمیل ہو کہ لوگوں کو بس کھانے کی اسمیل آ رہی ہے. مسجد کا ماحول اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرنا ہے. تو एक तो ये बात हुई। अच्छा देखिए सुभान अल्लाह, इससे एक बात मुझे याद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पे एक दफा बलगम लगा हुआ देखा था, किसी बंदे ने लगा दिया हो, तो वो सुभान अल्लाह हमारे नबी ने अपने हाथों से उसको खुरच दिया, स्क्रैच करके उसको उतारा। कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शर्म नहीं महसूस की कि मैं क्यों उतारूं, या फलां तुम इधर आओ और फलां को बुलाओ और किसी सफाई करने वाले को बुलाओ कि वो ये आके साफ करे, खुद अपने हाथों से। हम तो छोटी चीज मस्जिद में पड़ी हो तो नहीं उठाते कि हमें क्या जरूरत, खुद ही साफ करें। तो मस्जिदों का एहतराम है, देखिए मस्जिद का एहतराम वही करेगा जिसके दिल में अल्लाह की तहजीम होगी, क्योंकि ये शायर अल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियां हैं, इनसे अल्लाह ही याद आता है। तो जो अल्लाह की तहजीम करता होगा ना, वो मस्जिद का भी एहतराम करेगा, ये अल्लाह का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले और इनकी खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त और महबूब हैं। सुभान अल्लाह, इसलिए अगर अल्लाह के दोस्त और महबूब बनना है ना, तो अल्लाह के घर को आबाद भी करना है और उसकी खिदमत भी करनी है। कभी भी ना आर महसूस करें कि मुझे यहाँ पे वैक्यूम करना पड़ा, मुझे यहाँ पे ये करना पड़ा, मुझे कोई चीज उठानी पड़ी, और लोग तो ऐसे करते हैं और देखो हम उठा रहे हैं। अल्लाह ने आपको नेकी का मौका दे दिया, आप इस तरह अल्लाह के महबूब बन सकते हैं। तो इनको एक ये पाकी होगी, दूसरी पाकी क्या, मानवी तहारत, कि शिर्क ना यहाँ पे हो, यहाँ पे अल्लाह के अलावा औरों के जिक्र ना किए जाए। ठीक है, पीछे पीछे हमने आयात में पढ़ा था ना कि मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का जिक्र बुलंद होना चाहिए, ये नहीं है कि बस उधर की कहानियां, इनके किस्से, औलिया के किस्से, फलाने के किस्से, उसकी वो बातें, इसकी बातें, कोई शेरो शायरी कोई ऐसी नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पे अल्लाह का नाम बुलंद हो बस। और किसके लिए, तौईफीना, खास तौर पे ये तो बैतुल्लाह से ही एसोसिएट चीज है कि तवाफ, तवाफ आपको पता है एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में आप कहीं नहीं कर सकते, किसी जगह का आप तवाफ नहीं कर सकते सिवाय बैतुल्लाह के। लोग कब्रों का, अपने पीरों की कब्रों का तवाफ शुरू कर देते, लेकिन तवाफ कहीं भी और हराम है, किसी की कब्र का, किसी जगह का तवाफ नहीं है, सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ किया जा सकता है। ये ऐसी इबादत है कि आप जब वहां पे जाएं, तो ये उलमा फरमाते हैं कि वहां पे खाना काबा में तवाफ नमाज से भी अफजल है, कि आप नफली नमाज पढ़ने खड़े हो जाते ना, उससे भी अफजल वहां पे तवाफ है। क्यों? इसलिए कि नमाज तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाफ आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। तवाफ के बाद दो नफल तो पढ़ ही लेंगे। वल आकिफीना, और इतकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए, इसका मतलब मस्जिदें इन कामों के लिए, कि तवाफ तो नहीं, बाकी मस्जिदें, इतकाफ और रुकू सजदा यानी नमाज के लिए, इन कामों के लिए मस्जिद है, और बाकी बैतुल्लाह जो है वहां पे तवाफ भी होगा। व इज काला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल हादा बलदन आमिनन, अब देखें सुभान अल्लाह, एक ये भी कहा जाता है कि ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आए थे ना वहां पे, और वो देख रही थी पीछे, पूछ रही पहले कि आप हमें यहाँ पे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल खामोशी है। फिर वो पीछे आई, सवारी पे सवार हैं और जा रहे हैं, वो पीछे आई भागती थी, या आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया? तो सर हिला दिया और फरमाया फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा। तो उस वक्त कहा जाता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे चले गए और हजरत बीबी हाजरा जो है वो नजरों से ओझल हो गई, तो फिर उन्होंने ये दुआ की थी। बीबी हाजरा ने कहा था कि फिर आप शौक से जाएं, फिर अल्लाह ने अगर आपको ये हुक्म दिया तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, और अल्लाह ने नहीं जाया किया। देखो अल्लाह की खातिर जब इंसान कोई काम करता है ना, वो सोचता है हाय पता नहीं मेरे से चीज छिन जाएगी, हाय मेरे से दूर हो जाएगी, हाय ये देना पड़ गया। नहीं, अल्लाह लेता नहीं है कभी भी किसी से, वो उसके बदले में क्या कुछ देता है वो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी तरह सूरह इब्राहिम में भी आयत 35 से 37 तक आप लोग देख सकते हैं, रब्बे जअल हादा بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وہاں پہ بھی انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے اٹھا. اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے اس محترم گھر کے قریب ایک میدان میں لا بسایا جو زراعت کے قابل نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھل کھانے کو دے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں. یہ سورہ ابراہیم میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے. دیکھیں اگر کسی جگہ امن نہیں نہ ہوتا وہاں پہ کوئی بھی آنا نہیں چاہتا، تو وہ ان کی کیا دعا تھی؟ یہ نہیں کہ بس ہمارے لیے یہ ہو، کوئی اور نہ یہاں پہ آئے. ہم کوئی نیکی کوئی ہوتی ہے، کوئی بھلائی ہمیں ملتی ہے نا، ہمارا اتنے دل چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے کسی اور کو نہ مل جائے، بس مجھے ہی ملے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اس گھر کے لیے، اے اللہ لوگ اس طرف کو متوجہ ہو جائے. اور دیکھیں ان کی دعا ہی ہے آج کہ لوگ بھاگے جاتے ہیں اس گھر کی طرف. اور اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ کیوں بسایا ہے، حالانکہ یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں ہے، اے اللہ تاکہ وہ یہاں پہ نماز پڑھے. سبحان اللہ، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ وہ یہاں پہ صلاۃ کو قائم کریں. ایسے بھی کبھی کسی کی نیت ہوتی ہے کہ کسی کو کہیں اس لیے بسائے کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تاکہ تیرا گھر آباد ہو جائے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ گھر بنا لیا بس کافی ہے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. وہ اپنی اولاد کو بسائی اس لیے رہے اللہ کے گھر کے پاس کہ اللہ کے گھر میں آبادی ہو، یہاں پہ نماز کا اہتمام. کیسی ان کی دعائیں، ان کی دعاؤں سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے. اللہ اس کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ اس کے رہنے والوں کو بہت وافر رزق عطا فرما. رزق میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ثمرات میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر چیز کے ہی پھل آ جاتے ہیں، ہر چیز رزق بھی ہو گیا، عمدہ رزق بھی ہو گیا. ظاہر ہے پھل تو ہیں ہی ہیں، فروٹس تو ہیں ہی ہیں، عمدہ رزق، ہر طرح کا عمدہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو باہم پہنچا، تمام ضروریات زندگی اس میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کی زمین جو تھی نا اس میں یہ فرٹائل نہیں ہے، اس میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ وہاں پہ ریت ہی ریت ہے، نہ کوئی فیکٹریاں لگ سکتی. لیکن سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نسلوں تک چل رہی ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں پیدا ہونے والی جو بھی چیزیں ہیں نا وہاں یہاں سے مل جاتی. کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز ہے، چاہے پھل فروٹ کہہ لیں، چاہے سبزیاں کہہ لیں اور چیزیں کہہ لیں، یا کوئی بھی. لوگ اسی لیے تو وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہر دنیا جہان کی چیز وہاں پہ مل جاتی ہے، ہر چیز کا فروٹ، اس کا سمر یہاں سے دستیاب ہے. تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے لوگوں کے دل بھی اس طرف مائل کر دیے، اللہ نے وافر دے بھی. اچھا دیکھیں یہ بھی علماء نے اتنی دیکھیں باریکیوں میں گئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ اللہ یہاں پہ اگ جائیں یہ چیزیں. اگر یہ دعا کرتے تو شاید اس لیے نہیں کی ہو کہ ان کی اولاد پھر کہیں یہ کاشتکاری اور اس کے اندر ہی نہ لگ جائے. یہ دعا کی کہ اللہ دے دینا ان کو، دنیا جہان سے وہاں پہنچ جاتا، وہاں پہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب یہی دو چیزیں ہیں نا، ایک پیس اور ایک پراسپیرٹی، خوشحالی، یہی دو چیزیں ہیں نا جن کی خاطر لوگ کسی جگہ پہ جا کے بستے ہیں. اب ہم ان ملکوں میں کیوں آئے؟ اکثریت تو اسی لیے کہ امن و امان ہے، خوشحالی ہے. تو کسی جگہ کو بھی آباد کرنے کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ بھی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے وافر وہاں پہ چیزیں بھی دے دی. کیا تھا وہ؟ ایک ویران بنجر جگہ تھی، ریتلا صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا بالکل. اللہ نے وہاں پہ ایسی یعنی ان کے سروائیول کے لیے دیکھو کیسے انتظام فرما دیا. دیکھا پھر اللہ کی مدد کیسے آتی. وہ گھر آباد ہی ہوا، آج دیکھیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہے نا، جتنے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اس فیملی کے لیے، انہوں نے آباد کیا تھا اس جگہ کو. وہ قربانی نہ دیتے تو آج یہ جگہ آباد نہ ہوتی، ورنہ وہاں پہ اور ایسا کیا ہے؟ وہاں پہ تو پانی تک نہیں تھا، تو زمزم اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. اچھا پھر آپ کو اس سے کیا پتا چلا؟ ایک اور بھی بات پتا چلتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے دنیا کی دعا کی ہے، دنیا مانگی ہے نا، رزق مانگا ہے دنیا کا، امن مانگا ہے یہاں کا، तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान कहे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना था। तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है, दुनिया की हसना मांगने में कोई हर्ज नहीं। क्योंकि बाज लोग इसको बड़ा बुरा समझते हैं, हम तो दुनिया का कुछ मांगते ही नहीं है, बस दुनिया की सारी चीजें बुरी ही हैं, ना हमने घर मांगना है, ना हमने कोई खाना पीना मांगना है, ना हमने रिस्क मांगना है, ना हमने अमन मांगना, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, दुनिया के मांगो, कोई हर्ज नहीं है। पैगंबर मांग रहे हैं और अपनी नस्लों तक के लिए मांग रहे हैं, लेकिन साथ फिर आखरत भी मांग। ठीक है, तो लेकिन क्या फरमाया आगे देखिए, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, अल्लाह उनको दे। क्यों उन्होंने ये फरमाया, पीछे देखें आयत नंबर 124 में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मेरा अहद जालिमों के साथ नहीं है। उसमें एक इशारा ये भी था कि ऐ इब्राहिम, आपकी जुर्रियत में से जालिम भी पैदा होंगे, है ना। यहाँ पे वो क्या दुआ करें, एक तो ये पता चल गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए, जालिमों के लिए ये ऐद नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उनको एक्सक्लूड किया। तो अब बंदगी की इंतहा देखें, आजजी की इंतहा देखें कि अल्लाह फिर मुझे भी समरात किसके लिए चाहिए, जो तुझ पे ईमान लाने वाले और जो आखरत के दिन पे ईमान लाने वाले, मैं उनके लिए ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह, उनको देना, मैं भी जालिमों के लिए नहीं मांगता। देखा आपने, तो दोनों चीजें मांगी और ईमान वालों के लिए मांगी जो अल्लाह और आखरत पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, काला फरमाया, वमन कैफरा, और जिसने कुफर भी किया, जो कुफर करे, फउमत्तिउहू कलीलन, उसको भी मैं दूंगा तो सही मता, थोड़ा सा थोड़ा सा उसको भी फायदा तो दूंगा, लेकिन फिर क्या, इन द एंड क्या, सुम्मा अतरुहू इला अज़ाबिन नार, फिर मैं मजबूर कर दूंगा उसको आग के अजाब की तरफ। यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि जो काफिर भी होगा, आपने तो दुआ मांगी है ना अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को देना, उनको ही समरात मिले, उनको ही अमन मिले, अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि उनको मैंने दुनिया नहीं देनी, वो तो इमामत की बात थी ना वहां पे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया जालिमों को इमामत नहीं दूंगा। लेकिन ये कौन सी बात है, ये है रिस्क रोजी की, दुनिया की फायदों की, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैं दूंगा, इसलिए कि इमामत और चीज है, हिदायत और चीज है, और दुनिया के ये माश खाना पीना ये सब चीजें ये और चीज है, असल नेमत तो वही है, ये तो दुनिया में बरतने की चीजें हैं। जाहिर है अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना है, तो इम्तिहान के लिए आप देखें, एक कोई कमरा इम्तिहान भी होता है, कागज पेंसिल भी दी जाती है, कुर्सी मेज भी दी जाती है, देते हैं ना स्टूडेंट को, ये नहीं कहते तुमने फेल होना इसलिए तुम्हें कुछ नहीं देंगे, देते हैं, तो बाद में उस जो एग्जाम करेगा जैसा करेगा उसके ऊपर उसका रिजल्ट है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन हॉल में सब चीजें सबको बराबर मिल रही हैं। तो जिसने कुफर किया उसको भी मैं फायदा दूंगा, यहाँ पे कलीलन से ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा फायदा दूंगा उसको, मैंने ज्यादा दौलत नहीं देनी, ये नहीं है मतलब, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कलीलन का मतलब यह है यहाँ पे कि मैं उसको थोड़ा फायदा दूंगा, यानी ये दुनिया का फायदा जो है ना ये थोड़ा सा ही है, ठीक है, हो सकता है उसको बेशुमार दौलत अल्लाह ताला दे दे, बेशुमार दौलत, दुनिया की सारी दौलत दे दे, लेकिन याद रखो वो भी तो कलील है, आखरत के मुकाबले में क्या है दुनिया, कितनी थोड़ी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली समुंदर में डाल के निकाली थी, तो जितनी उंगली पे पानी लग गया ये दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी है, और आखरत ये समुंदर के बराबर, तो फिर इसके फायदे कितने होंगे, ज्यादा के थोड़े, इसका तो सब कुछ भी किसी को मिल जाए ना तो वो थोड़ा ही है, इसीलिए फरमाया कि मैं उसको भी दूंगा थोड़ा सा फायदा, उसको भी मिलेगा, यानी यहाँ का ये फायदा जो सारा ये थोड़ा ही है, ये मैं उसको भी दूंगा। हदीस में आता है, हदीस गौर से सुनिए, कितनी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम इंसानों में रोजी तकसीम फरमाई है ना, इसी तरह अखलाक भी तकसीम फरमाया। अल्लाह दुनिया तो सबको देता है, उनको भी देता है जो उसके महबूब है, और उनको भी देता है जिनको वो पसंद नहीं करता। क्या पता चला, दुनिया किसको देता है, सबको देता है, उनको भी जो उसके महबूब है, और उनको भी जिनको वो पसंद नहीं करता। तो आप देखें आज कितनी तरक्की है, जो मुशरिक है, जो वो है, कभी इंसान सोचता है लोग सवाल भी करते हैं, देखें इनको क्यों इतना मिला हुआ है, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, हैरान होते हैं, ये तो अल्लाह को मानते नहीं है, फिर ये कैसे इतनी तरक्कियां कर रहे हैं, देखिए सब कुछ तो इनको ही, इनके पास ही है। तो बात ये है, अल्लाह सबको देता है, इस हदीस से पता चला दुनिया सबको देता है, ये इस चीज का पैमाना नहीं है कि अल्लाह ने किसी को पसंद किया है या ना पसंद किया, सबको देता है। आगे हदीस को सुने, लेकिन दीन पे चलने की तौफीक सिर्फ उनको देता है जिनसे उसको मुहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, तो जिसको दीन मिल जाए ना, समझो वो अल्लाह का महबूब है। अगर आपको दीन मिल जाता है तो समझ लो अल्लाह ताला के प्यारे हैं आप। अगर आपको दुनिया की तरक्कियां मिल रही हैं तो उसको ये ना समझ लो कि मैं अल्लाह की प्यारी हूं या नहीं प्यारी हूं, वो इस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो फिर अल्लाह की मोहब्बत की क्या निशानी, दीन मिल जाए। ये है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ देता है, ये नहीं है दुनिया में, दुनिया तो सारों को दे रहा है, वो काफिर को भी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर एक हदीस में आता है कि अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है, मच्छर कितना छोटा है, उसका पार सोचें कितना हकीर हुआ, नजर भी नहीं आता उसका तो पार हमें कभी, इतनी भी नहीं अहमियत है। ये नहीं कहा कि इसके बराबर है मच्छर के बराबर, दुनिया की कीमत इसके बराबर भी होती यानी इतनी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला एक घूंट पानी भी ना देता, लेकिन उसने इतना कुछ दिया हुआ, इतना कुछ दिया हुआ इसलिए कि उसके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये बिल्कुल ऐसी बेकार रद्दी चीज है। उन्हें सबको दे दिए, उनको भी दी दिए जो उसको नहीं मानते, जो शेयर करते हैं। तो ये तो कलील है, ये थोड़ी सी, ऐसे कोई धोखा ना खाए कि फलां को मिली हुई है और फलां को क्यों मिल गई और देखो वो अल्लाह के प्यारे ही होंगे जो उनको इतना मिला हुआ, नहीं ये नहीं है क्राइटेरिया, ये सब थोड़ा है। इसीलिए एक रिवायत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब आप अपने मोमिन बंदों को कलील दुनिया क्यों देते हैं, थोड़ी इनके पास बेचारे गरीब होते हैं, कभी कहीं देखे ना बस ऐसे ही गुजारे लायक। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई, उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे रब तेरी अजमत और तेरे जलाल की कसम, अगर एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए हों और उसको पैदाइश के दिन से लेके सारी उम्र चेहरे के बल घसीटा जाए, सुन रहे हैं आप, एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हों और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से मरने के दिन तक उसको चेहरे के बल सारी जिंदगी घसीटा जाए, लेकिन उसका अंजाम ये जन्नत हो, ये घर और इसकी नेमतें हो, तो इस आदमी का हाल यह है गोया उसने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं, गोया उसको सब कुछ मिल गया, उसको सब मिल गया, सब मिल गया। फिर उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे रब आप अपने साथ कुफर करने वाले बंदे को इतनी फरावी इतनी दुनिया क्यों अता करते हैं, तब उनको जहन्नुम दिखाई दे, उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे रब अगर दुनिया में काफिर पैदाइश के दिन से क्यामत तक जिंदा रहे ना, क्यामत तक, ये 60-70 साल की जिंदगी नहीं, क्यामत तक जिंदा रहे और ऐश करता रहे, लेकिन उसका अंजाम अगर ये होगा तो उसका हाल ये है जैसे उसको कभी कोई भलाई मिली ही नहीं, उसने देखी ही नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। तो इनसे धोखा ना खाया करें, हम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, वो देखो उनको इतना मिला हुआ है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं मिला, हम अल्लाह के मानने वाले, और एक तो हमारे अपने ही आमाल कुछ इस काबिल नहीं है, उनको इसलिए नहीं मिला कि वो बहुत लायक थे और हम नालायक है, नहीं, उनको भी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया, हमें भी इम्तिहान के लिए दिया, और यहाँ पे अल्लाह सबको देता है चाहे कोई उसको माने या ना माने। देखिए ये आपके सामने दलील है आयत, मन कफर फअमतिउहु कलीलन, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, थुम्मा अतरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको आग की तरफ, आग के अजाब की तरफ घसीटूंगा, उस तरफ मजबूर करूंगा। तो फिर उसने क्या क्या फायदा हुआ उसको इस दुनिया का, जो कुछ उसको मिला था बताएं, कितनी भी मिल गई तो क्या वो कलील नहीं थी, कहाँ वो 60-70-80-100 साल की चलो जिंदगी, और कहाँ कभी ना खत्म होने वाला वक्त आग में कटना, आप उसको कामयाब कहेंगे क्या, वह बेसल मसीर और बहुत ही बुरी लौटने की जगह, जिसको अल्लाह पाक फरमा दे ये बुरी लौटने की जगह, तो वो कितनी बुरी जगह। वह इज यरफाउ इब्राहिम अल कवाइद मिन अल बैत व इस्माइल, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम इस घर की फाउंडेशन के ऊपर, बुनियादों के ऊपर तामीर कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दीवारें बुलंद कर रहे थे, इससे क्या पता चलता है कि ऑलरेडी वहां पे बुनियादें थी। ऐसा नहीं है कि बुनियादें इब्राहिम अलैहि सलाम ने कोई नया ही घर वहां पे बनाया था, बुनियादें ऑलरेडी थी, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। इसीलिए मैंने आपको जो बात बताई है ना कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बेटे से कहा कि फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि यहाँ पे ये अल्लाह के घर को तामीर किया जाए, तो इसका हदूद अरबा जो था कि किधर डायमेंशंस होंगी, क्या होंगी, ये इब्राहिम अलैहि सलाम को बता दिए गए थे। तो जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से बुनियादें निकल आई थी, फिर उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये घर अल्लाह का घर कहा जाता है, जो हिस्ट्री में है कि 10 टाइम्स तामीर हुआ। सबसे पहले इसको फरिश्तों ने बनाया था, ये सबसे पहला घर था अल्लाह का जमीन के ऊपर। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर तूफाने नूह में ये गिर गया था, तो उसके बाद फिर ये गिरा ही रहा था, मतलब यहाँ पे एक टीला सा था, तो लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह का घर बनाओ। इसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर कौम अमालका ने, फिर जुरहम कबीले ने, फिर कुसई बिन कलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में से हैं, उन्होंने, फिर कुरैश ने। अब याद है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले की बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर के अंदर हिजरे अस्वद रख के और फिर लेके गए थे और वहां पे लगाया था। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने। ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरह से जब इसकी बुनियादों पे तामीर कर रहे थे वो, तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे, ये काम करते हुए नेकी का काम करते हुए साथ साथ दुआएं कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू हमसे कबूल कर लेना। दोनों मिलके दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह, इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत गहरी बात है इसमें। देखिए, एक तो ये पता चला कि ये इतनी मुशक्कत का काम है। देखिए, इट्स नॉट इजी कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन करना, और वो भी दो लोगों सिर्फ, कोई उनके पास एक मजदूरों की फौज तो थी नहीं, दो लोग थे सिर्फ। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे इमाम बना दिया, अब मैं ये भी काम करूँ, इतनी मुशक्कत वाला काम, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैं इतनी मुश्किलों का काम करूँ, ना मेरे पास कोई चीज़ें हैं, कोई क्रेन नहीं है, कोई उठाने के लिए चीज़ें नहीं है। नहीं, इमाम है लेकिन अपने हाथों से काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए, तामीर करते हुए क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह हमसे कबूल कर ले। ये कौन बंदा कहेगा, ये वही इंसान कह सकता है कि जिसको ये फिक्र लगी हो कबूलियत की कि अल्लाह पता नहीं कबूल हो कि ना हो। देखें, एक बंदा जिसको बहुत जोम हो कि मेरे पास तो बड़ी नेकियां हैं और मैंने इतना कुछ किया है, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने फलां किया। हम तो छोटी छोटी नेकियां करके ही सोचते हैं ना, अब और हमने क्या करना है, हमने तो सारा कुछ ही कर लिया। वो इतनी नेकियां करके भी, इतनी कुर्बानियां दे के भी काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ए अल्लाह इसको हम इस काम को इस अमल को हमसे कबूल कर लेना। उनको कबूलियत की कितनी फिक्र लगी हुई है, उनको तो ये नहीं होना चाहिए था इसके बाद कि इतनी आजमाइशों, इतने इम्तिहानों से गुजरने के बाद और इतनी बड़ी सआदत पाने पे कि मैं अल्लाह का घर बना रहा हूं, उनको तो फखर होना चाहिए था, उनका तो सर फखर से बुलंद होना चाहिए था, लेकिन इतनी आजी से दुआ कर रहे हैं। हमारे लिए इसमें क्या सबक है, दरख्त जितना फल से लदा होता है ना, उतना ही आजी से झुका होता है, जो जितने बड़े मर्तबे पे होता है ना, वो उतना आजिज और इनकसारी वाला होता है। ये अंबिया देखें, सारी खिदमात करके भी, कुर्बानियां दे के भी, वो क्या बता रहे हैं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ ना, हम तेरा हक कभी अदा कर ही नहीं सकते, तेरा हक तो वो है कि जो कभी अदा हो ही नहीं सकता। ए अल्लाह हम तो ये कह रहे हैं कि तू हमारी इस खिदमत को कबूल कर लेना, इसकी इल्तजाएं कर रहे हैं। और हम जो खाली हाथ बैठे हुए, मुतमइन बैठे हुए, और इज्जत इंकसारी तो बिल्कुल नहीं होती। खास तौर पे अगर जरा सा भी कोई नेकी का काम कर लेना, अब तो हम कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अब क्या, अब तो हमारे मर्तबे ही बहुत बुलंद हो गए, अब तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, अब और क्या करें। नमाज रोजे हम कर लेते हैं, कुरान हम पढ़ रहे हैं, अब और क्या करना है हमें, कभी ये भी फिक्र होती है इसकी कबूलियत की कि पता नहीं कबूल हो कि ना हो। आपको पता है ना कुरान में कई जगह पे हमें ये बताया गया हफ्ते अमाल के बारे में, कि अमाल के जाया होने के बारे में, हबितत अमालहु, कि उनके अमाल जाया हो गए, तो अमाल तो जाया भी हो जाया करते हैं। हाँ? हमें ये भी पता है कि कहीं कोई बड़ाई का एहसास आ जाए, कोई तकब्बुर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो अमल कबूल ही नहीं हो। और वो देखें तकब्बल, बाब तफाउल से, बाब तफाउल में जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है उनको पता है क्या होता है, मुशक्कत मेहनत से काम करने का माना होता है ना, चाहे उसमें रुकावटें भी हो, तो कितनी मेहनत का वो काम कर रहे हैं, कितनी मुशक्कत से काम कर रहे हैं, फिर भी ये एहसास है, तो हमारे लिए कितना बड़ा क्या, कि हम चाहे कितना ही मुश्किल काम कर रहे हो तो इसके ऊपर इतने ना फूल जाएं कि मैंने यही बहुत बड़ा काम कर लिया कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी कर रही हूँ, हालांकि देखो ना मुझे कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी रुकावटें आ रही हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो अब इसके ऊपर इतनी बड़ी बन के बैठ जाए, नहीं, कितनी मेहनत से किया हुआ काम, मगर फिर भी फिक्र रहनी चाहिए अल्लाह मुझसे कबूल कर लेना, पता नहीं इसमें कितनी कमियां रह गई हूं, अल्लाह मेरा काम इस काबिल तो नहीं है कि आपके सामने पेश हो, कि खुद तेरे दरबार में शर्फे कबूलियत इसको मिल जाए, परवरदिगार तू सारी कमियों के बावजूद इसको कबूल कर ले, तो ये फिक्र होनी चाहिए। लेकिन ये उसी को हो सकती है जिसको, जो अपनी नेकियों को बहुत काउंट ना करता हो और उनपे फखर ना करता हो, और उसको नेकियों पर अपनी बड़ाई का जोम ना हो, तकब्बर ना हो अपनी नेकी का, वही ये फिक्र करता है, वो ये सोचता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मुझे बहुत करना है, वो ही नेकी करके उसकी कबूलियत की फिक्र करता रहता है। फरमा रहे इन्नका अंत समीउल अलीम, है अल्लाह तू ही है, तू सुनने वाला है हमारी दुआओं का, इनका हमारी इल्तजाओं का सुनने वाला, तू जानने वाला भी है जो हमारे दिलों में। सोचे अगर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के घर की खाना काबा की तामीर करते हुए ये दुआ मांग रहे हैं, हमें कितनी इस चीज की फिक्र करनी चाहिए। तो फरमाया इन्नका अंत समीउल अलीम, यानी तू ही है सुनने वाला, इसमें जो मैंने आपको बताया था ना हसर का माना, यानी तू ही अकेला है, वो कि हम भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं और हशरात भी सुनते हैं, लेकिन देखिए जो अल्लाह ताला का सुनना है ना और हमारे सुनने में बहुत फर्क है। अल्लाह ताला जो सुनता है तो वो सिर्फ इंसान की जाहिर बात को, आवाज को नहीं सुनता, उसके दिल की बातों को भी सुनने वाला है, उसकी इल्तजाओं को भी सुनने वाला है, और जानने वाला भी है, तू ही अकेला, तेरे अलावा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। रब्बना वजालना मुस्लिमैनी, अब उन्हीं की दुआ की आगे कंटिन्यूएशन है, ए हमारे रब बना दे हमको फरमा बरदार दोनों को, हम दोनों को फरमा बरदार अपने लिए। अब देखें वो कितने फरमा बरदार ऑलरेडी हैं, लेकिन दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, इसलिए कि इंसान को हमेशा इस चीज की जरूरत रहती है कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे, यानी इसलिए क्योंकि इंसान को पता नहीं ना होता कि आज अल्लाह का फरमाबरदार है, कल हालात कैसे हो, कल ईमान का लेवल क्या हो, तो यानी इसको कायम रखना, हमें बनाए रखना, हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाना, हमें जमाए रखना, कितना इंसान को पता चलता है ना कि देखो इतने ऊंचे मकाम पे भी पहुंच के ये डर रखते हैं कि अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कबूल ही ना हो हमसे, अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कल को क्या हालात हो, अल्लाह हमें हमेशा फरमा बरदार रखना, तो हम सबको कितना ज्यादा इसमें डरते रहना चाहिए कि आज तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं कुछ सीख रही हूँ या कुछ समझ रही हूँ या कोई बात कर रही हूँ या हिदायत की तरफ आ रही हूँ, अल्लाह, कल को मेरी किसी गलती की वजह से, मेरी किसी बात की वजह से ऐसा ना कहीं हो कि मुझसे ये तौफीक छिन जाए। कभी भी फखर ना करें, कभी गरूर ना करें अपने किसी नेकी पे, और कभी अपनी नेकी को काफी ना समझें। जो काफी समझता होगा वो ये नहीं कहेगा रब्बा ना तकबल मिन्ना। देखिए इतनी नेकियां करके भी इन्होंने काफी नहीं समझा, उसको क्या परवाह, मैंने ऑलरेडी इतनी करनी है, अब ये कबूल होना हो फिर क्या फर्क पड़ता है। ये वही फिक्र करेगा ना जो यही समझेगा कि अल्लाह अभी भी काफी नहीं है, अभी भी हक नहीं अदा हुआ, अल्लाह अभी भी नहीं मैंने कुछ किया। ये कौन कह रहे हैं सोचें जरा, हम क्यों छोटी छोटी, ये देखिए ये शैतान के वसवसे हैं, छोटी छोटी चीजें करके हम सोचने लगते हैं हमने कितना बड़ा मार्का मार लिया, हम कितने पहुंचे हुए बन गए। कोई पता नहीं है, आज अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो भी अल्लाह ही की देन है, कल वो चाहे तौफीक छीन ले तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हमें बनाए रखना मुस्लिमीन, अल्लाह फरमा बरदार रखना अपना। और फिर सबमिशन मांग रहे हैं ना, अल्लाह अपने इताद गुजार रखना, लका लिए अपने, सिर्फ अपने लिए। वमिन दुर्रियतिना, ए हम अल्लाह हमारे, हमारी औलादों में से भी, हमारी जुर्रियत में से भी, उम्मत मुस्लिमत लक, अल्लाह एक ऐसी जमात जरूर रहे, क्योंकि पता है ना कि एक जालिम भी होंगे उनमें, तो अल्लाह लेकिन एक जमात ऐसी जरूर रहे जो तेरी फरमा बरदार हो। देखिए उनकी दुआ नस्लों तक के लिए, हम अपनी औलाद तक दुआ मांग लेते हैं, आगे नस्लों तक सोचते भी नहीं, लेकिन उनकी दुआएं आगे तक है कि अल्लाह फरमा बरदारी सिर्फ हम तक नहीं है, नहीं कि हम ही सिर्फ फरमा बरदार, अल्लाह आगे भी। और यहाँ पे देखें हर कदम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ताकि पता चले कि ये वही नस्ल इब्राहिमी है जो आगे चल के फिर उम्मत मुस्लिमा बनी, नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चली, क्योंकि उन्होंने दुआ कर रहे हैं ना वमिन दुर्रियतिना। यहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम तो नहीं है, बनी इसराइल में से नहीं होगी उम्मत मुस्लिमा, ये होगी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत में से, क्योंकि उन्होंने ये दुआ की। वह आरिना मनासिकना, और ए हमारे रब हमें दिखा दे हमारी इबादत के अल्लाह तरीके दिखा दे। इबादत के तरीके क्या, यानी किस तरह हम तेरी इबादत करें जिससे तू राजी होता हो, समझ आई बात। देखें हाँ, वरना हम सोचते क्या है कि नियत काफी होती है, हमारी नियत अच्छी है तो बस काम चलता रहता है, हम यही इसी को अपने लिए काफी समझते हैं। हम बहुत, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर बड़ी लगन है, हमारे अंदर बहुत खैर है। अब जो भी आपके अंदर जज्बे हैं, सिर्फ बोलने से, नियतें रखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जैसा तरीका उसको पसंद है उसके मुताबिक उसकी इबादत ना करें। वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह दिखा दे, अब अल्लाह ताला कैसे दिखाएगा, हो सकता है ख्वाब में दिखा दे, हो सकता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके सिखा दें, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पता है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके नमाज सिखाई थी, पढ़ के दिखाई थी। तो अल्लाह हमें दिखा देना अल्लाह ऐसे, ताकि हम वैसे ही करें। देखो इससे पता चलता है ना उनको कितना शौक है अभी भी, हालांकि अल्लाह के फरमा बरदार है, लेकिन कैसा शौक है कि हम अल्लाह की वैसी इबादत करें जैसे उसको पसंद है। ये नहीं कि हम बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब हमें इसमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे अल्लाह ताला को पसंद है, किससे वो राजी होता हो, बस हमने कर ली ना, हमारी नियत अच्छी है, वो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि मैंने उसके लिए नमाज पढ़ी है तो ठीक है। नहीं, ये काफी नहीं होता। हम देखें एक नमाज को ही ले लें, हम कभी ये सोचते हैं कि हम ये देखें कि अल्लाह ताला को किस तरह पसंद है, क्योंकि जो उसकी पसंद है वो तरीका उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया इब्राहिम अलैहि सलाम के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ के दिखा दी, रोजा रख के दिखा दिया, हज करके दिखा दिया, बल्कि फरमाया मेरे से ये हज के तरीके सीख लो, हो सकता है इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर ना हूं। तो क्या हम इतनी फिक्र करते हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा तरीकों के मुताबिक इबादत करें, और ये हमारी ख्वाहिश हो कि हम सीख लें, हम देख लें, हमें पता चल जाए, हम तो बॉदर ही नहीं करते। बचपन से जो सीख लिया बस सीख लिया, जैसे किसी ने नमाज पढ़ा दी बस वैसे ही सीख लिया, उसके बाद ये नहीं सोचा कि मैं देखूं कि नमाज नबी क्या थी, कैसी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। जो कुरान किसी ने पढ़ा दिया जैसे जैसा तैसा सीख लिया, उसके बाद ये नहीं बॉदर करना कि मैं वैसे कुरान पढ़ना सीखूं जो मेरे अल्लाह को पसंद आए, जो जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया जो सही तरीका है। हर इबादत के तरीके में देख लें, हम बॉदर नहीं करते, हम क्या कह देते हैं फौरन, मेरी नीयत तो अच्छी है ना, अल्लाह को मेरी नीयत का पता है, तो मेरी नीयत थी तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है ना। देखो वो इतने बड़े पैगंबर होके, और इस्माइल अलैहि सलाम भी पैगंबर हैं, दोनों कह रहे हैं कि अल्लाह हमें इबादत के तरीके दिखा दे, और मकसद क्या होता है कि हम उस तरह से इबादत करके तुझे खुश कर सके, तुझे राजी कर सके। कितना कुछ है ना हमारे सीखने के लिए नायाब। वतुब अलैना, अल्लाह हम पर मेहरबान हो जा, हमारी तौबा को कबूल कर ले। इस बात पे तौबा, हाँ अल्लाह का घर बनाया, कह रहे हैं हमारी तौबा कबूल कर लेना, हम पर मेहरबान हो जाना। हमें तो कोई कहे कि तौबा कर लो तो हम कहते हैं हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिस पे तौबा करें, और अगर कोई हम दो चार नेकी के काम कर रहे हो फिर तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम तौबा इस्तगफार करें किस बात पे, हम कौन सा कुछ करते हैं, हम क्या कर रहे हैं जो हम तौबा करें, क्या किया है मैंने। और ये काबा की तामीर करके कह रहे हैं कि अल्लाह तुब अलैना, सोचा आपने क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि कोई नेकी भी इंसान करता है ना तो उसमें पता नहीं कितनी कमियां रह जाती हैं, कितनी कोताहियां रह जाती हैं, कितनी, जाहिर है अल्लाह ताला की जैसे शायाने शान काम होना चाहिए वैसे तो इंसान कभी नहीं कर सकता है, चाहे पैगंबर ही क्यों ना हो। हाँ हमारे जैसों को तो पता नहीं, मैं कहती हूँ नमाज पढ़ के भी रोजा रख के भी तौबा ही करनी चाहिए कि अल्लाह जो हमारी नमाजों के हाल हैं और जो हमारी और इबादात के हाल हैं, सोचे वो लोग कह रहे हैं, तो अल्लाह इसके ऊपर हमारी तौबा कबूल कर, हम पे शफकत की नजर फरमा, हम पे मेहरबान हो जा, हमें कदम कदम पे, हमें तो हर वक्त तौबा करनी चाहिए, नेकी करके फूले नहीं तौबा करें। अल्लाह फिर भी नहीं हक अदा हुआ, अल्लाह फिर भी पता नहीं है यहाँ पे कितनी गलतियां हो गई हो इस काम में। इन्नका अंत तवाबुर रहीम, बेशक तू ही है, तू तौबा कबूल करने वाला, तवाब यानी बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बार बार तौबा कबूल करने वाला, और रहीम बार बार रहम करने वाला, तू ही है। तो ऐसे रब के सामने हम अपनी इल्तजा रखते, और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला कैसा है, तवाब कैसा है, कि वो तो मुंतजर रहता है अपने बंदे की तौबा का, कि बंदा कब तौबा करे तो मैं उसको माफ करूं। अल्लाह ताला तो खुश होते हैं इंसान की तौबा से, वो तवाब है और वो इतना रहम करने वाला है कि बंदा जो ही उसकी तरफ देखे पलटता है, वो रहमत की नजर उसके ऊपर कर देता है, चाहे जितने भी गुनाह लेकर आए। कितनी सारी हमारे लिए अमल की बातें इन आयात में, तो कितनी सारी हमारे लिए अमल की बातें इन आयात के अंदर, कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, नेकी करके हमारे जहन में क्या बात होनी चाहिए, नेकी करके हमारा अमल क्या होना चाहिए, हमें मुंह से क्या बोलना है, रब्बना तकबल मिन्ना भी, और अल्लाह हमारी तौबा भी कबूल कर दे, तौबा इस्तगफार भी करनी है हमें और बहुत ज्यादा करनी है। तो अब ये कहाँ रह जाता है कि हम ये छोटे छोटे काम करके और उसके बाद सोच लें कि जो है ना हम बस काफी हो गया और हम ठीक हैं और वी आर सेफ और हमने तो बहुत कुछ कर लिया और अब तो कुछ रह ही नहीं गया। देखिए रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन, फिर और दुआ कर, जाहिर है नस्लों के लिए दुआ की तो अल्लाह इनको हिदायत पे रखने के लिए, इनकी हिदायत के लिए भी कोई इंतजाम की होना चाहिए ना। तो अब एक दुआ है रसूल के लिए कि अल्लाह भेज इनमें, इनमें किन में, अब उस वक्त तो साथ यही है ना इस्माइल अलैहि सलाम, और उनके साथ ही दुआ की है ना कि हमारी जुरियत में से उम्मत मुस्लिमा को उठाना, तो इनमें से एक रसूल भेजना, इन यानी इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद में से ही मांगे हैं ना एक रसूल, मिन हुम इनमें से। अब ये यहूद के लिए भी एक बात है कि उनको भी ये समझ आ जाए कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने तो खुद दुआ मांगी थी कि इनमें से एक रसूल भेज, तो अब बनी इस्माइल में से ही रसूल आएगा, फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि हम में से नहीं आया तो इसलिए हमने नहीं माना। तो उनकी ये दुआ थी कि अल्लाह आखिरी नबी इनमें भेज, इनमें एक रसूल भेज जो मिन हुम इन्हीं में से हो। क्यों इन्हीं में से हो, इसकी क्या हिकमत है, कोई बाहर से क्यों ना हो। इसलिए कि जो जिन लोगों में से होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इन लोगों की इन आदात क्या है, अतवार क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनकी जुबान क्या है, ये सब चीजें जानता है ना। अब मिसाल के तौर पे आप एक अंग्रेज को भेज दें किसी सिंध के गांव में और उसको कहें कि वहां पे जाके इनको बातें बताओ, कोई तालीम दो, तो कितना कम्युनिकेशन गैप होगा ना, वो उनको समझता होगा बात ना, वो ना उसको पता है कि इनका कल्चर क्या है, ना उसको ये पता है कि इनके तौर तरीके क्या है, ना उसको पता है इनकी ज़हनियत क्या होती है, क्या चीज़ें इनके लिए अहम है क्या नहीं है, कितना मुश्किल है ना उसके लिए। तो इसलिए इन्हीं में से भेज जो इनको अंडरस्टैंड करता हो, इनकी जुबान में बोलता हो। वो क्या करे आके, ये भी दुआ मांगी, ये चार कामों की दुआ मांगी, यतलू अलैहिम आयाती का, वो पढ़े तेरी आयतें इनके ऊपर, ए अल्लाह ऐसे एक रसूल को भेज जो तेरी आयतें इनको पढ़ के सुनाए, यानी तेरा कलाम इनको पढ़ के सुनाए, तिलावत करे। अब तिलावत का माना तो आप समझ चुके हैं ना, फॉलो करना, पढ़ना ऐसे कि समझ भी आ रही हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या आ जाता है फिर, इसमें अल्फाज आ जाते हैं कि अल्फाज को सही तरीके से अदा करना, उनकी तजवीद, ये सब चीज इसमें आ जाती है। और हक्का तिलावती ही आपने पिछली आयात में पढ़ा है, वो बहुत खूबसूरती से उसके अंदर सिर्फ दो अल्फाज में बता दिया गया पूरा हक्का तिलावती ही के कौन लोग हैं जो इस किताब पे ईमान लाने वाले हैं, जो इसकी तिलावत का हक अदा करें। तो वो रसूल क्या करता हो, अल्लाह तेरा कलाम इनको पढ़ के सुनाए, फिर क्या करे, और नंबर टू क्या करे, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, और अल्लाह इनको तालीम दे किताब की। तालीम देना अलग बात होती है और वैसे एक बताना अलग बात होती है, अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन देखें आप एक बात को गौर करें, वो लोग तो अरबी थे, उनको तो कोई, अब हम सोचें कि हम तालीम लें हमें तो कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हम अरबी नहीं जानते, वो तो अरबी जानते थे, क्या उनको सिर्फ तिलावत करना उनके सामने क्या ये काफी नहीं था, नहीं, तालीम भी जरूरी थी कि इस किताब की तालीम दी जाए। वो तालीम कैसे होती है ये भी हम इंशाल्लाह अभी बात करते हैं। तालीम के लिए मुअल्लिम चाहिए होता है ना, और तालीम एक तरीके के साथ दी जाती है। तालीम दे किताब की और हिकमत की, हिकमत क्या है कि किस तरह से किताब पे अमल किया जाए, ये है हिकमत। ये अमल किसने हमें करके बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। तो अमल के तरीके, अमल कैसे होगा, ये सब हिकमत है। अब ये देखें कि ये हिकमत हमें किसने दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी ना, तो यानी हिकमत क्या है, हदीस है, सुन्नत है, ये हिकमत है। वह युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, यानी इनकी तरबियत करे, सिर्फ तालीम ले लेना काफी नहीं है, तरबियत भी। तज़किये का मतलब क्या होता है, क्लींस करना, प्योरीफाई करना स्पिरिचुअली, बाहर से नहीं, बाहर से तो बहुत सो लोग अपने आप को क्लींस करते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से किसी को पाक साफ करना। और इसमें दो चीजें आती हैं, नंबर वन बुराई को निकालना, और नंबर टू नेकी को ग्रो करना किसी के अंदर, नशो नुमा देना। ये दो चीजें हैं जिससे तज़किया बनता है। अगर किसी का तज़किया करना है तो उसके अंदर से बुराइयों को निकालना और नेकी को उसके अंदर डालना। जैसे बिल्कुल जैसे आप जमीन में कुछ उगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसकी झाड़ झंकार गंद पहले साफ करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं ना, यही है तज़किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर तक सोचा कि ये इंतजाम होना चाहिए लोगों के लिए ताकि वो उम्मते मुस्लिमा बने। अल्लाह तू जबरदस्त है, गालिब है, हिकमत वाला। अब ये काम कैसे होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया था जिससे वो अरब के जाहिल लोग सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हु वरदु अन्हु वो बन गए, वो बद्दू कैसे चेंज हुए, ये चार काम किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन चारों कामों की बेस क्या है, क्या चीज है जो उनमें कॉमन नजर आ रही है? किताब, किताब है ना, कुरान है, कुरान है जो कॉमन नजर आ रहा है। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से उन लोगों को बदल दिया था, और आज भी अगर किसी सोसाइटी को खुद को बदलना है तो यही चार काम करने होंगे। देखें, एक इंडिविजुअल को बदलना है या सोसाइटी को बदलना है, ये जैसे इंडिविजुअल बदले जाते हैं, जब इंडिविजुअल्स बदलते हैं तो सोसाइटी बदल जाती है ना। एक बंदे को भी आपने बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? कैसे बदलेंगे आप उसको? लेक्चर दे के, डांट के, धुओं से, हम जैसे अपने बच्चों को करते हैं, बस नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ी तो ये है वो, इससे नहीं चेंज आती। बात क्या है, सबसे पहले उनकी सोच को जाना जाए, उनकी थिंकिंग को जाना जाए। जब ये जान लिया आपने तो सोच को बदलने पे काम करना होगा। और कैसे सोच को बदलेंगे? अल्लाह और आखरत पे ईमान उनके अंदर रासिक करना होगा, पक्का करना होगा। जब सोच बदलती है ना तो अमल भी बदल जाता है। सोच अगर सही नहीं है तो अमल कभी नहीं बदल सकता। आज कोई आपकी धुओं में या बातों में या आपके प्रेशर में कोई काम कर भी लेगा, जैसे बाज लोग समझते हैं कि फिर हमने प्रेशर से ही, धुओं से ही हमने सारा इस्लाम नाफिज कर देना, ऐसे नहीं है। पहले जमीन को तैयार करना होगा। जब ये जमीन तैयार होगी तो फिर इसमें बीज डाला जाता है ना। अगर जमीन तैयार ना हो और आप बीज डाल दें तो क्या होता है? बीज भी जाया हो जाएगा। तो जब अल्लाह ताला पे ईमान होगा, यकीन होगा, कुरान पे ईमान होगा, कयामत पे ईमान होगा, तो फिर किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं होगी, फिर पर्दे की हिकमतें बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर ये नहीं कहना इसकी जरूरत होगी कि इतनी लंबी लंबी तकरीरें की जाएं, नहीं इसमें ये हिकमत है, इसमें तुम्हारे लिए ये फायदा है। फिर इंसान खुद पूछता है कि बताओ अल्लाह का हुक्म क्या है। आगे आप पढ़ेंगे, सहाबा आके पूछते थे बताइए हम क्या खर्च करें। तो फिर तो सिर्फ उसके सामने ये कह दिया जाए ना, अल्लाह का हुक्म ये है, तो वही उसके लिए काफी होता है। इसलिए कि अगर वो अल्लाह को मानता है तो वो आगे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसको पता है कि अल्लाह का हक है मेरे ऊपर, वो जो हुक्म दे मुझे मानना है, मुझे समय ना आता ना करना है, ये मेरे रब का हुक्म है। उसके लिए ये कितनी बड़ी बात होती है। तो फिर उसको लेक्चर देना और समझाना और ये चीजें नहीं चाहिए होती। और अगर ईमान ही नहीं है, ईमान पक्का नहीं है, तो सबसे पहले ईमान को सही करना पड़ेगा ना। सहाबा कराम की जिंदगियां देखें कैसे पलट गई, क्या थे और क्या बन गए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी प्रोसेस को उनके साथ किया। सबसे पहले यत्रु अलैहिम आयाति का किया, पहले ऐसा कलाम चाहिए जो दिल को नरम कर दे, दिल की जमीन तैयार हो जाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किताब और हिकमत की तालीम दी, उनको सिखाया। आप देखें, एक दफा कोई दर्स सुन लेने में और कोई बात सुन लेने में, जैसे आप लोगों में से अक्सर लोग कहते हैं हम फलां दर्स अटेंड कर लेते हैं तो काफी है। ठीक है, आप दर्स अटेंड करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो कुछ देर के लिए आपके ईमान को ताजा कर सकता है, करेगा, लेकिन वो देर पा नहीं होता। तालीम में और दर्स सुन लेने में, या इसको दर्स समझने में कि ये जो क्लास है इसको बस एज अ दर्स मैं लिसनर के तौर पे सुन लूं, बहुत फर्क होता है। तालीम में क्या होता है, आपके बच्चे तालीम हासिल करते हैं ना, क्या होता है तालीम, उसके लिए एक टीचर होता है, एक माहौल होता है, एक सिलेबस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक पंक्चुअलिटी होती है, ये सब चीजें होती है ना तालीम के लिए। रेगुलर आपका बच्चा जाता है तो तालीम लेता है। ऐसे क्यों नहीं कर लेते, किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो किसी के पास बैठ के दो चार मेडिकल की बातें सुन ले और कहे चलो मैं इससे ही डॉक्टर बन जाऊंगी। ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं? क्यों वो तालीम लेते हैं, किसी तालीमी इदारे में क्यों जाते हैं, किसी टीचर से क्यों पढ़ते हैं, किसी सिलेबस को फॉलो क्यों करते हैं, रेगुलरली क्यों जाते हैं, क्यों इम्तिहान देते हैं, क्यों तैयारी करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि तालीम यही होती है। बाकी क्या होता है, बस ये इधर उधर से सुन ली चार बातें, उधर से सुन ली, उधर बैठ कर उधर चार बातें सुन ली, इधर चले गए, बस ये वक्त गुजारी का वो तो हो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम मेहनत से कतराते हैं ना। उन्होंने ये नहीं कहा था, कुछ और लफ्ज नहीं यहाँ पे आए, यहाँ पे तालीम का लफ्ज आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, मुअल्लिम, मैं मुअल्लिम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम दी लोगों को। तो वो बद्दू भी ये कहते हैं कि भाई हम खुद ही, अगर देखें मुअल्लिम की जरूरत ही नहीं थी, किसी उस्ताद की जरूरत ही नहीं थी, तो ये कुरान क्या होता, किसी पहाड़ पे लोगों को मिल जाता, वहां से जाके ले आते। अरबी तो पहले ही जानते थे, कोई एक आध पढ़ के सुना देता उनको। लेकिन तालीम जरूरी है अगर बदलना है तो। किसी को बदलने के लिए एक इंसान की सोच को जब आप बदल देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अमल बदल जाता है। तो उसके लिए ये तरीका कार है, कैसे सोच बदलेगी, इस तालीम से बदलेगी, किताब की तालीम से। तो पहले तिलावत भी सही करनी आनी चाहिए, उसके बाद बाकायदा तालीम हो, तब जिंदगियां बदलेंगी। तब फिर इंशाल्लाह ताला आप में से जो लोग माशाल्लाह कर चुके हैं, कोर्स भी कर लिया पहले, वो खुद देखें कि जब उन्होंने इस कुरान की तालीम नहीं ली थी उस वक्त जिंदगी कैसी थी, और जब तालीम ले ली उसके बाद जिंदगी में क्या फर्क आया। जब अल्लाह ताला का हक पहचान लिया तो उस वक्त जिंदगी में क्या चेंज आए। सोच जब बदलती है ना इंसान की, तो उसका लाजमी नतीजा होता है कि फिर इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, फिर इंसान की पसंद और नापसंद बदल जाती है, फिर उसके गोल्स बदल जाते हैं, फिर उसकी लाइफ में जो एक्टिविटीज है वो बदल जाती है, वो टोटली एक नया इंसान बन जाता है। और जब ये चेंज आती है तो फिर उस जाहिर है अमल में चेंज आ जाती है, अंदर जो बदल गया, फिर चिराग से चिराग रोशन होता है, आगे से आगे चेंज चलती चली जाती है। तो इसके लिए तालीम किताब की जरूरी है, यही उस वक्त हुआ था, यही आज जरूरत है। अगर आपने माहौल को बदलना है, अगर आपने अपने घरों को बदलना है, अगर आपने अपनी सोसाइटीज को बदलना है, ये काम करना होगा। वल हिकमत, और हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमल करके दिखाया, कैसे बताया, इसमें तफसीर भी आ जाती है कुरान की, इसमें हदीस भी आ जाती है। या क्योंकि तफसीर में भी क्या है, हदीस ही है ना, तफसीर से ही हमें पता चलता है, हम अपनी तौर पे तफसीर नहीं कर सकते, हमें कुरान की तफसीर क्या, सारे उसमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का ये मतलब बताया, इस पे ऐसे अमल किया। और वह युज़क्की हिम, और तज़किया करें उनका, सिर्फ फिर किताबें ना पढ़ा दे, फिर उनको यानी उनकी तरबियत भी करें, उनकी ट्रेनिंग भी करें, उनके अंदर से जो बुरे काम है उनको बताए कि ये नहीं करना। तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम की कैसे उनके अंदर नेकियों के फिर बीज बोए। तो ये दुआ मांगी थी इब्राहिम अलैहि सलाम ने, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इब्राहिम अलैहि सलाम अपने बाप इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ हूँ। ये उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी। ठीक है, ये चार काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए तो वो माशरा बदला। अच्छा, अब क्या है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन ये काम करेगा, कौन करेगा बताएं, कोई और नबी आना है या फरिश्ते आसमान से उतरने हैं, कौन करेगा फिर ये काम, मैं और आप ही तो करेंगे, और कौन करेगा। ये ही काम हमने करना है। हम रोते तो बहुत हैं, हमारे ये हो गया, ये हमारे देखो आज क्या सोसाइटी का हाल है, ऐसे है वैसे है, क्योंकि ये काम नहीं हो रहा। इस काम को करें, इसको फैलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है, इमामत की यही तो जिम्मेदारी है। ये उम्मत मुस्लिमा को जो मिली है अब इमामत, कयामत तक उम्मत मुस्लिमा को ही इमामत मिली रहेगी, तो उम्मत मुस्लिमा को ये काम करना है। इमामत में मैंने अभी आपको बताया था ना, हिदायत है, इल्म है, मार्फत है, अल्लाह की पहचान है, तो ये इनको ये करना है कि लोगों तक ये पहुंचानी है, ये इल्म भी, ये हिदायत भी, ये सारे काम इनको करने हैं। लेकिन किताब की तरफ हम आते नहीं, किताब से हमारी गफलत है, खास तौर पे इसकी तालीम को तो बिल्कुल नहीं हम लेना चाहते, हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए क्या, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि हमने अपने टाइम को उन जगहों पे लगाना शुरू कर दिया जिनका ना दुनिया का फायदा और ना दीन का। टाइम टाइम इसलिए नहीं है कि हम फेसबुक पे रहते हैं, हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते रहते हैं, हम ईमेल्स करते रहते हैं, हम टेक्सटिंग करते रहते हैं, हम ऑल द टाइम इन्हीं एक्टिविटीज में हैं, मगर या घरों की सजावट और इन्हीं की खिदमतों में, यही है दो चार काम और क्या। तो वक्त तभी निकलेगा जब आप अपनी जिंदगी से फालतू कामों को निकाल दें, वो दुनिया के मामले में कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, दुनिया के मामले में कम पे कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन दीन के मामले में आला से आला मकासिद रखें। तो अल्लाह ताला ने क्या जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर ये डाली है, वही जिम्मेदारी जो पहले रसूल की थी, अब उस उम्मत की जिम्मेदारी है। कि और उन्होंने क्या फरमाया, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ऐ अल्लाह तू जबरदस्त भी है, शरीयत तूने दी है, तू तेरे पास अथॉरिटी है, किताब तेरी तरफ से आई है और तू हिकमतों वाला है। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह, जो और कौन है जो मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौन सा तरीका था, आगे अगली आयत में आएगा, लेकिन ये वही तरीका था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे ही थे। तो जो तालीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, अगर कोई इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रिजेक्ट करता है, उससे मुंह मोड़ता है, उससे दूर होता है, तो इसका मतलब उसने किसके तरीके से दूरी इख्तियार की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि सेम है ना। ये वही करेगा जो बेवकूफ है, जो अपने आप को जिसने बेवकूफ बनाया, क्योंकि जो अकल वाला होगा वो तो कभी ऐसी हमाकत कर नहीं सकता। ये लोग कहते थे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, क्या तुम इब्राहिम के तरीके से हो जबकि तुम उनकी तालीमात से ही मुंह मोड़ो, ये वही तो तालीमात हैं। और इसी वजह से इब्राहिम के तरीके की वजह से ही हमने उनको क्या किया, वलकद इस्तफईना फिद दुनिया, उनको हमने चुन लिया इस दुनिया में, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो जरूर सालिहीन के साथ होंगे। तमाम नेकों की जमात जो है ना, उसको सम अप करके क्या कह दिया गया, सालिहीन, जिसमें अंबिया भी हैं, शुहदा भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कंपनी में रहना चाहता है आखिरत में, उसको सालिहीन में से होना पड़ेगा, उसको अपने आप को इनमें शामिल करना पड़ेगा। तो उनको हमने दुनिया में भी चुन लिया कि दुनिया में भी उनको अपना खलील अल्लाह ताला ने बनाया, हर मजहब वाले उनकी कदर करते हैं, उम्मत मुस्लिमा में हर बंदा उनके ऊपर दरूद भेजता है जब दरूद हम पढ़ते हैं। तो कौन है जो इनसे मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, मगर वही हो सकता है जिसने अपने आप को बेवकूफ बनाया, क्योंकि इब्राहिम को तो हमने चुन लिया था, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सालेहीन में से होंगे। तो जो इनके तरीके से फिरेगा तो दुनिया में भी नहीं चुना जाएगा और आखिरत में भी सालेहीन में से नहीं होगा, इसका मतलब है। इत काला लहू रब्बू असलिम, उनका तरीका क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि जब कभी उनसे कहा उनके रब ने असलिम, फरमा बरदार हो जाओ, जब जब अल्लाह ताला ने उनको कोई हुक्म दिया और फरमाया कि सर झुका लो, अपने आप को रब के हवाले कर दो, तो क्या कौल असलम तो रब्बिल आलमीन, फौरन उन्होंने कहा। आप देखिए मुफसरीन फरमाते हैं कि देखिए असलिम और काला के दरमियान ना वाह है, ना सुम्मा है, ना फा है, कुछ भी नहीं है, फौरन आगे आया काला असलम तो रब्बिल आलमीन। क्यों? इसलिए कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा सी देर के लिए सोचते तक नहीं थे अल्लाह का हुक्म मानने में, फौरन इताहत करते थे, फौरन फरमाया असलम तू, मैंने मान लिया, मैंने सर झुका दिया, किसके लिए, ले रब्बिल आलमीन। ये नहीं फरमाया असलम तू लका, अल्लाह तेरे लिए मैं फरमा बरदार हो गया, ये भी तो कह सकते थे, फरमाया ले रब्बिल आलमीन, यानी रब्बिल आलमीन के लिए, यानी अल्लाह तू तो इस लायक ही है। एक तो इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर दी, नंबर टू क्या है इसमें, कि अल्लाह तू इस लायक है कि तेरी फरमा बरदारी की जाए, मैं क्यों ना तेरी इताअत करूं, जबकि तू तमाम आलमों का रब है, तो मेरा तेरी इताअत करना कोई बड़ा बहुत बड़े कोई मेरा एहसान नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्लाह मैं क्यों ना करूं, तू तो है ही इस लायक। कितनी इसमें हमद भी हो गई, कितना प्यारा कलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस तरह की दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए मांगी। अल्लाह हमें ये दुआएं सिखा दे और हमसे वो काम ले ले जो उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे हैं अब, और वो है अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाना, उसकी किताब को आम करना, उसकी तालीम देना और उसकी किताब की तिलावत करना। यही चार काम ये जो आपकी क्लास में भी कहे जाते हैं यही काम है तिलावत, कि आप ये सही से तजवीद सीखें, हिफ्ज़ करें और तजवीद सीखें, और तालीम इस किताब की और हदीस भी इसमें आ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत अता फरमाए और ये इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए इंशाअल्लाह।
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت